نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تيسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا بل تحبون الآجلة وتذرون الآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ابھی ہم نے سورۃ قیامت کی تلاوت سنی تو مجھے تو اس میں سے بس ایک جملہ ہی اٹک گیا دماغ میں میرے ذہن میں یہ ایک جملہ بار بار دہرا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں کہتے ہیں کہ کلا بل تحبون الآجلة کلا ہرگز نہیں بل بلکہ تحبون تم محبت رکھتے ہو العاجلہ جلدی مل جانے والی دنیا سے یہ بھی کوئی اتنی بری بات نہیں تھی لیکن اگلی بات سے تو واقعی پتہ چلا کہ اگر اگلی کی قیمت پہ ہے تو بہت بری بات ہے اور وہ کیا ہے وتذرون الآخرہ اور تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو حقیقت یہ کہ اپنی اصل کے اعتبار سے دنیا ہماری ضرورت ہے جب ہم اس کو ضرورت سے زیادہ مقصد بنا لیتے ہیں تو ہم ناکام ہو جاتے ہیں یہ بالکل ایسے ہی کہ جب ہم اپنی ضرورت کے تحت ایئرپورٹس پہ جاتے بھی ہیں اور وہاں سے لوگوں کو لے کر بھی آتے ہیں لیکن ہم میں سے کوئی ایئرپورٹ پہ رہنا پسند نہیں کرتا یا کسی ٹرین اسٹیشن پہ کھڑے لوگ ٹرین اسٹیشن کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوتے ہیں لیکن وہاں رہتے نہیں کبھی آپ نے کسی کو ٹرین اسٹیشن پہ گھر بنائے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا ایسی جگہوں کا تصور آتا ہے ایک دم تھکن اور اکتاہٹ کا سما سامنے آتا ہے یہ دنیا ہمارے لیے ایک راستہ تھا ہم نے اس کو منزل سمجھ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب عابر السبیل اس دنیا میں اس طرح سے رہو جیسے کہ کوئی اجنبی رہتا ہے کبھی آپ اس ملک میں جب فرسٹ ٹائم آئے ہوں گے آج سے 10, 15, 20, 25 سال پہلے کوئی آپ کو نہیں جانتا تھا آپ کسی کو نہیں جانتی تھیں آپ کے شوہر کی نئی نئی جاب لگی تھی ہو سکتا ہے اگر وہ ڈاکٹر تھے ڈاکٹر ہیں اور ہاؤس جاب میں ہوں تو بہت محدود سا آپ کا زندگی کا سامان تھا پے بھی کم تھی لیکن آپ ایک کمرے دو کمرے کے اپارٹمنٹ میں رہنے لگ گئی پھر آپ کو لگا کہ کوئی بات نہیں کیا کرنا ہے گھر میں رکھ کے سامان نہ کوئی آتا ہے نہ کوئی جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ ایک وقت کے ساتھ ساتھ جب زندگی اپنے عروج پہ آئی محنتوں کا پھل ملنے لگا گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے رزق حلال آنے لگا تو وہ ایک تو کمرے کا گھر پھر چھوٹا لگنے لگا پھر زمین پہ بیٹھتے ہوئے چبھن ہوتی تھی پھر ایک کاؤچ آئی پھر اس پہ کشنز آئے پھر اس کے بعد بڑھتے بڑھتے آج تو ایسے لگے گا کہ جیسے شاید اس سے بڑے چھوٹے گھر میں رہ ہی نہیں سکتے تھے جب انسان کسی جگہ نیا ہوتا ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے تھوڑی دیر رہنا ہے تو وہ بس ضرورت کا سامان رکھتا ہے پھر جب بہت پاؤں لمبے ہو جاتے ہیں پھر بہت سارے لوگ انسان کو ملنے لگتے ہیں تو انسان بعض دفعہ ان چیزوں کے اندر کھو جاتا ہے بالکل اسی طرح ہم اس دنیا میں آئے تھے ہم سب نے ہی کسی نہ کسی طرح سے آدم اور حوا کا قصہ سنا ہوا ہے کیسے جنت میں ان کو بسایا گیا کیسے ابلیس حسد کا شکار ہوا ایک سجدے کا انکار کر کے چین نہ پڑا تو پھر آدم اور حوا کے ذل میں خیال ڈال دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تجھ سے ڈر کے تجھے اس پھل سے روکے کیونکہ پھل کھا لوگے تو تم ہمیشہ روگے اور تم نعوذ باللہ اللہ کے مقابلے میں آ جاؤ گے اس لیے بہتر ہے کہ تم اس پھل کو چکھ لو جدھر خواہش پیدا ہوئی جہاں لمبی عمر کی تمنا جاگی آدم اللہ کا حکم بھول گئے آج بھی یہی ہے ہم سب کو اللہ یاد ہے اور ہم سب کو پتہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے لیکن جب آرزو کا نشہ آتا ہے جب آرزو آتی ہے کوئی نشہ چڑھتا ہے کوئی خیال آ جاتا ہے کوئی شہوت آ جاتی ہے جب ایک دم ہمارے دماغ میں کوئی کہتے ہیں کہ خیال بس جم گیا کر کے رہوں گی تو بس پھر ہم تھوڑی دیر سہی چاہے کسی خوشی کے نام پہ پہلی خوشی آخری خوشی بچے کی خوشی سسرال کی خوشی بھائی کا بچہ بہن کا بچہ چاہے وہ کسی کی بھی خوشی کا نام ہو لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہم اللہ کو کم بھول ہی جاتے ہیں اور امید کیا کرتے ہیں کہ دیکھنا یہ سب کچھ کر کے بھی ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو جائیں گے स्माइल दे देंगे, कहेंगे अल्लाह तुझे तो पता है फिर हम मजबूर थे ना, तो हम अपने ही जैसे अपने ही कद से कुछ ऊपर नीचे के लोगों से मजबूर हो जाते हैं, उनसे मरूब भी हो जाते हैं, हम उनकी नज़रों में जचना भी चाहते हैं, लेकिन वो ज़ात जिसके लिए मेरे और आपके पास तो अल्फाज ही नहीं, उसने सिर्फ एक आयत में 25 नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स बयान करके हमें आयतुल कुर्सी की सूरत में थमा दिया कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम। आप सबको जुबानी आती होगी, घर जाके काउंट करेंगे तो 25 नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स एक आयत में, अस्माउल हुस्ना। तभी तो शैतान फिर उसकी ताब नहीं लाता। और मैं सोचती हूँ कि जिसने अगर एक फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी तर्जमे और मफहूम के साथ पढ़ ली, फिर वो लोगों से मरूब नहीं होता, उसको इसकी कोई केयर नहीं होती कि लोग मुझे इस वक्त कैसा समझ रहे हैं, उसको तो हर वक्त अपने रब की नजरों में जचना है, वो हर लम्हे अपने रब से पूछ पूछ के भी जीता है कि बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, अल्लाह जी आपको मैं अच्छी लग रही हूँ, अल्लाह जी इस वक्त आपको मेरे पर गुस्सा तो नहीं आ रहा, अल्लाह जी आप मुझसे खुश हैं ना, अल्लाह जी आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हर लम्हे उसके दिल में ऐसे ख्यालात होते हैं कि मैंने अपने रब की नजरों से नहीं गिरना। और जिसको उस रब की मार्फत नहीं होगी, वो पूरा रमजान नमाजें पढ़ेगा मस्जिद में जाकर, 8 नहीं 20 तरावियां पढ़ेगा, और इसके बाद फिर वो क्या करेगा, जो ही रमजान खत्म तो उसकी अपनी जिंदगी की एक नई डगर शुरू हो जाएगी। वो ये सोचता है कि साल का एक महीना काफी है ना अल्लाह के लिए, काफी और क्या करना है अल्लाह ने लेके, शुक्र नहीं करता अल्लाह ताला हमने तो इतने रोजे भी लंबे रख लिए, गर्मियों में रखे, लोग तो रोजे भी नहीं रखते। और इस तरह एक छोटा सा खाकी बंदा इतनी बड़ी जात की नाफरमानियों पे नाफरमानियां करता जाता है। तो याद रखिए, ये दुनिया बुरी नहीं, अल्लाह ने बनाई, उसने खुद सिखाया, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब से मांगो तो पहले दुनिया मांगो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी जब अल्लाह का घर बनाया तो सबसे पहले अपनी औलाद की दुनिया मांगी, मुझे आपको भी ये सिखाया, लेकिन दुनिया नहीं हसना मांगो। और दुनिया में हसना क्या है, ऐसी दुनिया जो अल्लाह की रजा से मिले, और इसके हराम कभी हसना नहीं हो सकता, शुबे वाला माल कभी हसना नहीं हो सकता, नाफरमानियों से ली दी चीज कभी भी हसना नहीं बन सकती। और हसना वो होता है दुनिया में कि जिसको पाकर अल्लाह का कुर्ब भी मिले, ये नहीं कि अल्लाह ने नेमतें ज्यादा कर की तो हमारी इबादत कम हो गई। अमूमन लोगों के रवैये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जब खुली छत के नीचे कभी सोते थे पाकिस्तान के किसी शहर में, तो फजर से पहले ही आंख खुल जाती थी, मच्छर ही उठा देते थे। फिर अल्लाह ने थोड़ी सी और आसूदगी दी, पंखे लग गए तो बरामदों में आ गए, तो चलिए फिर तहज्जुद की अजान से ही आंख खुल गई। और जिस दिन फिर एसी आ गया तो फजर भी बड़े मन मार के उठाए गए। हमारा हाल क्या है कि जितना अल्लाह हमारी दुनिया बढ़ाता है, हम उतना उसका हिस्सा कम करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लम ने एक बड़ी खूबसूरत दुआ सिखाई थी, फरमाया कि अल्लाहुम्मा रज़ुकनी हुब्बक, ए अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत दे, व हुब्ब मन यनफाउनी हुब्बुहु इंदक, और उस शख्स की भी मोहब्बत दे जिसकी मोहब्बत मुझे तेरे करीब कर दे। अल्लाहुम्मा मा रज़क्तनी मिम्मा उहिब्बु, ए अल्लाह जो तूने मुझे दिया है जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ। आपकी मेरी लिस्ट भी बड़ी लंबी होगी मोहब्बतों की, मर्दों के तो 4 जोड़े और एक जूती, और जैसा भी कर ले लगते एक ही जैसे हैं, वो कर भी लेंगे तो फर्क क्या पड़ना है, लेकिन हमारी तो बड़ी लंबी लिस्ट है कि ए अल्लाह जो तूने हमें दिया, मा रज़क्तनी मिम्मा उहिब्बु फजअल्हु कुव्वतल्ली, ये दुआ मांगनी है मैंने आपने कि अल्लाह जो कुछ तूने मुझको दिया और मैं उससे मोहब्बत भी करती हूँ, बना दे इसको कुव्वत मेरे लिए, फी मतोहिब्बू उन कामों की जिनको तू पसंद करे। अल्लाह मुझे अपने घर से मोहब्बत है, मेरे घर में खैर के काम होने लगे। अल्लाह मुझे अपने कपड़ों से मोहब्बत है, ये कपड़े पहनकर मैं खैर के काम करूँ। मुझे अपनी गाड़ी से बड़ी मोहब्बत है, ये गाड़ी खैर के रास्तों में मेरी मुआविन हो, मेरी जिंदगी की एक एक चीज जो है वो तेरे रास्ते में लगे। ये नहीं मांगता इंसान कि अल्लाह तो दुनिया दे ही ना, ये तो कोई नहीं कहता, कभी कोई नहीं कहता अपने बच्चों के लिए अल्लाह मेरे बच्चों को सुखी रुखी दे, ये तो कोई नहीं कहता। हाँ, ये नबी सल्लम की चॉइस थी कि कहा कि एक दिन भूखा रहूं और सब्र करूं, और एक दिन पेट भर लो कि शुक्र करो। ये तो उनके पास भी ऑफर आई थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप कहें तो आपके दुनिया में घर सोने चांदी के बन जाए। कहा नहीं, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, मेरा दिल नहीं चाहता इन चीज़ों में पढ़ने से। और मेरा ईमान है, ये बात बड़े यकीन से कहूँगी, कि अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपको दिखता नहीं है ना कुछ, तो मत सोचिए कि आता नहीं था, आता बहुत था। एक एक दिन में 100-100 ऊँटों की कुर्बानियाँ की, 63 ऊँट अपने हाथ से ज़िबा किए और बाकी हज़रत अली से करवाए, कहाँ से आते थे? और सोने चांदी के इतने इतने ढेर आते थे और रात को उसमें से एक डल्ली के बराबर भी पास नहीं रहता था। तो याद रखिए कि मोमिन के पास पैसा आता है, वो हड हराम नहीं होता। वो कस्बे हलाल तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि ये तो शुहदा और सिद्दीकों के साथ हो गया ऐसा बंदा। अबू बकर ताजिर थे, नबी सल्लम ताजिर थे, अब्दुलरहमान बिन औफ ताजिर थे, उस्मान ताजिर थे। इस्लाम मर्दों को ये तो नहीं कहता कि घर बैठ जाओ, कुछ नहीं करना, हाथ में एक कासा ले लो और लोगों से पहले मदद मांगो और सारी जिंदगी इसी पे चलते जाओ, ये नहीं कहता। लेकिन गौर से सुनिएगा, मोमिन के पास माल ठहरता नहीं है। एक साल तो बड़ी दूर की बात है, अल्लाह के नबी के पास जितना भी माल आया इसके बावजूद सारी जिंदगी आपने कभी ज़कात नहीं दी? कि हाँ, अल्लाह के नबी ज़कात नहीं देते थे? क्यों देते? ज़कात तो एक साल जो चीज आपके पास रहे आप उस पर देते हैं। आप तो हजरत आयशा से आकर पूछते हैं कि आयशा वो बकरी का गोश्त आया था किधर गया? कहने लगी सारा बांट दिया, बस मैंने दस्ती का थोड़ा सा गोश्त आपके लिए रख लिया, क्या आपको अच्छा लगता है, तो मैंने आपके नियत से रख लिया, बाकी सारी बकरी चली गई, बस इतना सा गोश्त रख लिया। कहने लगा आयशा नहीं, जुमला गलत है, सारी बकरी बच गई और ये गोश्त का टुकड़ा साया हो गया, यानी जो अल्लाह के रास्ते में दे दिया वो बच गया। तो नुक्ता नजर दुरुस्त करने की जरूरत है कि अल्लाह जो दिया है उसको अपने मेरे आपके कुर्ब का जरिया बना दे। और इसके साथ हमारा एक गम क्या है कि दुनिया मिल जाए तो हम अल्लाह से जरा सा पहलू काटते हैं, एक और भी मसला है, थोड़ी दुनिया छिन जाए, जरा सा नफे में नुकसान हो जाए तो हम कहते हैं हालात खराब हो गए, इकोनॉमी डूब गई, घर की वैल्यू कम हो गई, 2-4 महीने के लिए मियाँ की जॉब चली गई, तो हम उस गम में फिर कहते हैं अब दिल नहीं लगता, अब दुआ क्या मांगे, दुआएं तो कबूल नहीं होती। तो उसी दुआ में आके अल्लाह के नबी कहते हैं अल्लाहुम्मा वमा ज़वैता अन्नी, अल्लाह जो मुझसे चला गया, जो मुझसे छिन गया। कई चीजें दुनिया में मिलती हैं फिर चली जाती हैं, कौन सी चीज? मिम्मा उहिब्बू, जिसको मैं बड़ा पसंद करती थी, जो मुझे बड़ा अच्छा लगता था वो तूने ले लिया, कोई बात नहीं, फजल हु फरागल ली फी मतोहिब्बू, उसको मेरे लिए फरागत का जरिया बना दे जिस कामों के लिए से तू मोहब्बत करता। पहले बच्चा था, अल्लाह ने बच्चा ले लिया, कोई बात नहीं, मेरा वो वक्त जो बच्चे के साथ लगता था वो कुरान के साथ लग जाए। पहले जॉब थी, अब जॉब चली गई, तो अब जॉब जॉब का रोना, क्या रोता रहूं, क्या रोती रहूं, इस फारिग वक्त को कुरान सीखने का वक्त बना दे। तो याद रखिए, दुनिया के बारे में इंसान को अपना नुक्ता नजर दुरुस्त करने की जरूरत है। मैं और आप जब तक अपनी सोच दुरुस्त नहीं करेंगे, हमारा तर्ज अमल दुरुस्त नहीं होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने जब कभी इम्तिहान देने के लिए घर से जाना होता है, आपके अपने बच्चे भी जाते होंगे, यकीनन आप सब सिस्टर्स ने भी बहुत सारे इम्तिहान दिए होंगे, कई तो सारी जिंदगी देते रहते हैं, डॉक्टर हैं तो रिफ्रेशिंग कोर्सेज और क्या कुछ चलता है। आप इमेजिन कीजिए कि जब सुबह घर से कोई निकलता है इस सोच के साथ कि इम्तिहान देना है, तो उसकी तैयारी क्या वही होगी जिसको किसी ईद की पार्टी में आने का शौक हो या किसी शादी में जाने के लिए तैयार होगा? एक होगा मूड, मूड एक होता है, कतन नहीं। कपड़े एक जैसे होते हैं नहीं, तैयारी नहीं, एहतमाम नहीं। वो तो बेचारा हो सकता है नाश्ता भी ना करके जाए, थोड़ा और ही पढ़ लो, इम्तिहान पे नजर है, फोकस्ड है, वक्त जाया नहीं करता, उसको एक एक मिनट की कदर है। फिर वो जो 3 घंटे का वक्त वहां गुजरना है, क्या उसको वो इधर उधर ताका झांकी में कौन क्या करा, जरा मैसेज चेक कर लूं, जरा व्हाट्सएप से देख लूं, जरा वाइबर पे देख लूं। वो कहते हैं नहीं, मेरे पास वक्त बड़ा थोड़ा है, डिटर्मिंड होता है और उन 3 घंटों में अपना पेपर कर करा के फिर भी इसी गम में होता है कि कोई पेपर, कोई सवाल रह तो नहीं गया, फिर बार बार पढ़ता है, फिर दोहराता है, और शायद कई रातों के जगराते की आंखों में थकन लेकर लेकिन दिल के सुरूर से घर वापस आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह पेपर बहुत अच्छा हुआ। इसके बरक्स जब आप पार्टी पे जाते हैं तो पहले ही पहला गम क्या पड़ता है, क्या पहनेंगे, इसके साथ क्या लगाएंगे, मैचिंग जूता कोई नहीं, लिपस्टिक कोई नहीं, फिर जब इतने गम है तो अब तैयारी कहाँ से करें, बाल घर बनेंगे कि बस वो क्या कहाँ जाए। अच्छा फिर और एक सबसे बड़ा गम जो सिस्टर्स को होता है कि क्या तरीका इख्तियार करूँ कि कोई मेरे जैसा ना लगे, और इससे भी बड़ा गम ये होता है कि मेरा जोड़ा लीक आउट ना हो जाए, वक्त से पहले एक्सपोज हो गया, पता लग गया कहाँ से, और कोई मेरे जैसा जोड़ा ना पहन ले।